एक एक करके शिविर के सातों दिन पूरे हुए। कल सुबह शिविर का समापन होगा, तो आज शाम की धर्म चर्चा में एक बार फिर समझ लें, अच्छे प्रकार समझ लें कि जहाँ सात दिनों में क्या सीखा, धर्म सीखा। धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक होता है सैद्धांतिक पक्ष थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पक्ष व्यवहारिक। तो जो प्रैक्टिकल था उसे तो खूब समझे हुए हैं, सांस को जानना है, स्वाभाविक सांस को जानना है, और जब संवेदना मालूम होने लगे तो संवेदना को जानना है, जैसी भी है जानना है, समता के साथ जानना है, उसके प्रति अनित्य बोध जगा कर जानना है। थ्योरी के क्षेत्र में कभी कभी भ्रांतियां पैदा होती है, क्योंकि भारत से ये कल्याणकारी विद्या 1.5-2 हजार वर्ष पहले ही लुप्त हो गई। विद्या तो लुप्त हुई, इसका नाम भी लुप्त हो गया। जब मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा कि आओ तुम्हें भारत की एक बहुत बड़ी विद्या सिखाएंगे, उसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना, ये तो नाम कभी सुना ही नहीं। तो घर आकर के हिंदी की डिक्शनरी देखी, उसमें विपश्यना शब्द नहीं। संस्कृत की जो डिक्शनरी मेरे पास थी उसे देखी, विपश्यना का कोई शब्द ही नहीं। सो देश से शब्द ही लुप्त हो गया, तो टेक्निक का तो क्या कहना, लुप्त हुआ ही। और जो इसका थियोरेटिकल पक्ष है वो भी बड़ा विकृत हुआ। 1.5 हजार वर्षों से ऐसा गलत प्रचार किया गया, ना समझी से किया गया, अज्ञान के कारण किया गया कि लोग भूल बैठे। तो समझें कि हम क्या करने आए और हमने क्या किया, कोई भ्रांति न रह जाए। आते ही तीन रत्नों की शरण ली, बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण। ये तीन रत्नों की शरण किसी एक संप्रदाय से, किसी एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से, किसी दूसरे रिलीजन में, दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए नहीं, धर्म में दीक्षित होने के लिए। धर्म सबका होता है, वो किसी एक संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं होता। फिर भी समझें, बुद्ध की शरण। उस समय भी समझाया गया कि शरण व्यक्ति की नहीं हुआ करती, व्यक्ति के गुणों की होती है। बुद्ध की शरण, बुद्धं शरणं गच्छामि, गौतमं शरणं गच्छामि नहीं, गौतम की शरण नहीं है, बुद्ध की शरण। और बुद्ध हो जाना किसी गौतम की मोनोपोली नहीं है। सिद्धार्थ गौतम के पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, और सिद्धार्थ गौतम के बाद भी आगे जाकर न जाने कितने बुद्ध होंगे। तो अगर हम शरण इस दृष्टिकोण से लेते कि हम गौतम बुद्ध की शरण जा रहे हैं, और इसलिए गौतम बुद्ध हमारे सारे पाप को धो देगा, हमको मुक्त कर देगा, ऐसा होता नहीं। ये धर्म की बात नहीं। जब कोई कहता है कि आओ आओ मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो समझना चाहिए धोखा है, ये व्यक्ति धोखा दिया चाहता है। कोई किसी दूसरे को मुक्त कर ही नहीं सकता, हर व्यक्ति को स्वयं मुक्त होना पड़ता है। अपने मन पर मैल हमने चढ़ाया है, किसी दूसरे ने नहीं चढ़ाया, अपनी नासमझी से चढ़ाया है, अपनी अज्ञान अवस्था में चढ़ाया है, तो उसको साफ करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें साफ करना पड़ेगा। कोई दूसरा हमें रास्ता बता सकता है कि भाई देखो ऐसे मैंने भी साफ किया है, तुम भी करो, ये तरीका है, इससे अपने मन को साफ कर सकते हो, मैल को दूर कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो, बस रास्ता बताएगा। तो जो व्यक्ति बुद्ध होगा, कोई भी हो, वो इस बात का दावा नहीं करेगा कि आओ मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसा दावा करता है तो अभी बुद्ध नहीं हुआ, अभी बहुत छोटा है, सचमुच महापुरुष नहीं हुआ। सचमुच बुद्ध हो जाए तो कहेगा काम तुम्हें करना है, तुम्हें ही किच्चं आ तप्पं, तुम्हें ही तपना है, तुम्हें ही काम करना है। अखा तारो तथागता, कोई तथागत होगा तो आख्यात करेगा, रास्ता बताएगा, ये रास्ता है, क्योंकि वो चला उस रास्ते पर, इसीलिए तथागत कहलाता है। तथागत माने तथ कहते हैं सच्चाई को, तथ्य, तथ सच्चाई को, सच्चाई के सहारे कदम कदम चलते 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 इस अवस्था तक पहुंच गया, तो तथता के सहारे चलते चलते आगत आ गया, मुक्त अवस्था पर आ गया, वो व्यक्ति तथागत हो गया। कोई हो, जो भी सच्चाई के रास्ते चलेगा वो तथागत बन जाएगा, और जो तथागत बन जाएगा वो केवल रास्ता बताएगा, किसी को अपने कंधे पर उठा करके मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंचाएगा, पहुंचा भी नहीं सकेगा, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, धोखा है, उससे बचना है। तो हम जो बुद्ध की शरण गए तो उसके गुणों को याद करते हुए, बोधि है उसमें, और बोधि कैसे आई, धर्म के रास्ते चलते चलते चित्त को निर्मल करते करते भीतर से बोधि जागी, बुद्ध हो गया, चित्त निर्मल हुआ तो बोधि जागी, तो बुद्ध हो गया। बुद्ध की शरण जा रहे हैं, इसका मतलब हम में भी ऐसी बोधि जागे, हम भी ऐसे रास्ते चलें जिससे हमारा भी चित्त निर्मल होते होते भीतर से हमारी प्रज्ञा जागे, हमारी बोधि जागे, हमारा ज्ञान जागे। इस अर्थ में बुद्ध की शरण, ऐसी धर्म की शरण। तो धर्म की शरण बौद्ध धर्म की नहीं, बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का होके रह जाएगा, हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का होके रह जाएगा, जैन धर्म केवल जैनियों का, मुस्लिम धर्म केवल मुसलमानों का, ईसाई धर्म ईसाइयों का, सिख धर्म सिखों का, पारसी धर्म पारसियों का, धर्म तो सबका होता है। उसके पीछे, धर्म शब्द के पीछे कोई पुछल्ला नहीं लगता, धर्म शब्द के साथ कोई बैसाखी लगाने की जरूरत नहीं है, धर्म धर्म है जो सबका है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, निसर्ग के नियम है, ऐसा होगा तो ये रिजल्ट आएगा ही, इसको धर्म कहते हैं। और धर्म हमेशा सनातन होता है, सनातन धर्म, आज तो भूल गए सनातन धर्म किसको कहते हैं, सनातन धर्म किसको कहते हैं, जो सदा एक सा रहता है। जैसे आग का धर्म जलना है, जलाना है, तो आज के करोड़ों अरबों वर्ष पहले भी आग का यही धर्म था, आज भी यही धर्म है, आगे करोड़ों अरबों वर्ष तक भी यही धर्म रहेगा, सनातन है वो धर्म, सनातन हमेशा कायम रहता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में विकार जागते हैं, हमको व्याकुल बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, हजारों करोड़ों अरबों वर्ष पहले भी जिस किसी व्यक्ति के मन में विकार जागता था ऐसा ही व्याकुल होता था, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष के बाद भी जिस किसी व्यक्ति के मन में विकार जागेगा इतना ही व्याकुल होगा, सनातन है ये नियम, सनातन है और सबके लिए है। ऐसा नहीं कि ये केवल बौद्धों पर लागू होता है कि केवल हिंदुओं पर कि मुसलमानों पर कि जैनों पर कि ईसाइयों पर, सब पर लागू होता है तो धर्म होता है, नहीं तो संप्रदाय हो जाएगा। सब पर लागू होता है इसलिए धर्म कहलाता है, सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, हर समय। ये जो प्रकृति के नियम है, निसर्ग के नियम है, कुदरत का कानून है, सब समय, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में, भविष्य काल में भी, सब समय लागू होता है। और सार्वदेशिक है, सब देशों पर, ये नहीं कि इस देश के लोगों पर लागू होता है, उस देश के लोगों पर नहीं लागू होता, सब पर लागू होता है क्योंकि धर्म है। जैसे ही इसे बौद्ध धर्म कह दिया कि हिंदू धर्म कह दिया कि जैन धर्म कह दिया, वैसे इसकी जो शुद्धता है वो नष्ट हो गई। ये अलग अलग संप्रदाय होते हैं, संप्रदाय में और धर्म में क्या भेद है इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। धर्म सबका एक ही होगा? हिंदू का अलग, बौद्ध का अलग, जैन का अलग, मुस्लिम का अलग, ऐसा नहीं होगा, सबका एक जैसा होगा। संप्रदाय अलग अलग होंगे, मानो भीतर का सार तो एक ही होगा, ऊपर के छिलके अलग अलग होंगे। तो छिलके हैं वो संप्रदाय हैं, जैसे इस संप्रदाय का अपने कर्मकांड हैं, ऐसे कर्मकांड करने वाले इस संप्रदाय के लोग हैं, ऐसे तीज त्यौहार मनाने वाले इस संप्रदाय के लोग हैं, ऐसे पर्व उत्सव मनाने वाले इस संप्रदाय के लोग हैं, ऐसे कर्मकांड करने वाले इस संप्रदाय के लोग हैं, ऐसी वेशभूषा वाले इस संप्रदाय के लोग हैं। ये जो भिन्न भिन्न है, ये संप्रदाय है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। जिस संप्रदाय की जो मान्यता है उसके मुताबिक अपने पर्व उत्सव मनाए, अपने तीज त्यौहार मनाए, अपने व्रत उपवास करे, कोई बुरी बात नहीं, बशर्ते कि कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे दूसरे संप्रदाय वालों के मन में पीड़ा जागे, ऐसा नहीं करे, लेकिन अपना करे, साथ साथ धर्म का पालन करे। ये ऊपर के छिलकों को ही धर्म मान लिया, मैं ये कर्मकांड पूरा करता हूँ ना तो बहुत धार्मिक हूँ, मैं ये व्रत उपवास करता हूँ ना बहुत धार्मिक हूँ, मैं इस तरह का तीज त्यौहार मनाता हूँ, पर्व उत्सव मनाता हूँ बहुत धार्मिक हूँ, मैं ऐसी फिलॉसफी मानने वाला हूँ बहुत धार्मिक हूँ। धार्मिक नहीं हो, एक संप्रदाय में दीक्षित हो, अपने समाज के लोगों के साथ रहना है तो जैसे सब लोग करते हैं करते हैं, हम भी करते हैं, पर धार्मिक नहीं है। धार्मिक तो तब होगा जबकि शील सदाचार में पुष्ट हो जाएगा, मन को वश में करने में पुष्ट हो जाएगा, मन को निर्मल करने में पुष्ट हो जाएगा, तो समझो धार्मिक हुआ। धार्मिक एक हिंदू भी धार्मिक हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी, ईसाई भी, सिख भी, मुस्लिम भी, कोई व्यक्ति हो, सदाचार का जीवन जीता है, मन को वश में रखता है, मन को निर्मल रखता है तो धार्मिक है। धार्मिक हिंदू, धार्मिक मुस्लिम, धार्मिक बौद्ध, धार्मिक ईसाई, धार्मिक भारतीय, धार्मिक पाकिस्तानी, धार्मिक अंग्रेज, धार्मिक, धर्म तो कोई भी धारण करे, बाकी और नाम उसके साथ चाहे सो लगे हों, धार्मिक होना चाहिए। तो हमने धर्म को समर्पित किया, धर्म की शरण है, माने धर्म को हम धारण कर रहे हैं, धर्म की शरण है, संघ की शरण है। तो किसी एक संप्रदाय के व्यक्ति का संघ नहीं होता, संघ माने जो व्यक्ति धर्म के रास्ते चलते चलते सील समाधि और प्रज्ञा को संगठित कर लिया, संघ हो गया। जो व्यक्ति राग द्वेष और मोह से संघर्ष करके उनको नष्ट कर दिया, वो संघ हो गया। कोई हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, संघ हो गया, माने संत हो गया। ऐसे किसी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में प्रेरणा जागे, अरे हम भी ऐसा बने, हम भी ऐसा बने, तो इस प्रेरणा की शरण है। उस व्यक्ति की भी शरण नहीं, वो व्यक्ति हमें नहीं संघ बना देगा, वो रास्ता बताएगा, चलना हमें ही पड़ेगा। मैल हमने पैदा किया तो उसको दूर करने का काम हमारा है, कोई रास्ता बता देगा। तो शरण जब ली तो बहुत अच्छी तरह समझ करके, भगवान बुद्ध ने ये भी बार बार कहा, अत्तदीप विहरथ अत्त शरणं न अन्य शरणं, अपने द्वीप बनो, अपनी शरण में जाओ और अपने अंदर धर्म जगा करके उस धर्म की शरण में जाओ, किसी और की शरण नहीं। अत्तदीप, लोग उसका अर्थ अलग करने लगे, दीप के माने दीपक, यहाँ दीपक से मतलब नहीं है। वैसे बात ठीक है, कोई अपना दीपक खुद बने तो अपने को रोशनी खुद दिखाए, अच्छी बात है, पर यह अर्थ नहीं था उन दिनों की भाषा में। दीप कहते थे द्वीप को, आइलैंड को। कोई आदमी समुद्र में यात्रा कर रहा है और बड़े जोरों का तूफान आया, अब उसका जहाज कहो, उसकी नौका कहो, डगमगाने लगी, न जाने कब डूब जाएगी। तो देखता है कहीं आसपास कोई द्वीप हो, कोई आइलैंड हो, तो वहाँ जाकर के शरण ग्रहण कर लूँ तो बच जाऊँगा। तो वो शरण अपने आप अपने भीतर है, अत्तदीप, अपने भीतर ही तुम्हारा द्वीप है, अपनी शरण है, उसकी शरण लो। अंदर जो धर्म है, माने अंदर जो धर्म जगाओ और उसकी शरण लो। जो आदमी इतनी स्पष्ट रूप से धर्म समझाता है, लोग समझे नहीं, भूल गए, उसकी शिक्षा को भूल गए, तो उसे बौद्ध धर्म कहने लगे। और आज तो बौद्ध धर्म पराय धर्म है, पराय धर्म है, इसे सुनकर नाक भौंसी कोड़ते हैं, अपना नहीं है तो पराया है, तो पराया है। अरे अपना है ना, सदाचार का जीवन जीना केवल बौद्धों की मोनोपोली है। मन को संयमित करना केवल बौद्धों की मोनोपोली है, मन को निर्मल करना केवल बौद्धों की मोनोपोली, अरे सबकी है। तो धर्म है, हम धर्म के शरण गए, हम उन संतों के शरण गए जिन संतों ने शील समाधि प्रज्ञा में परफेक्ट होकर के अपना कल्याण किया, औरों के कल्याण में सहायक हो गए। इस माने में हमने तीन रत्नों की शरण ली, रत्नों की, रत्न माने उनमें जो गुण हैं, उन गुणों की शरण है, व्यक्ति की शरण नहीं। उसके बाद क्या किया, हमने पंचशील लिए, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वी बात नहीं बोलेंगे, नशे पत्ते का सेवन नहीं करेंगे। क्यों क्यों लिया? एक तो जीवन में बहुत आवश्यक है, जब जब हम किसी दूसरे की हानि करते हैं, दुराचार करके, वाणी का दुराचार करके, शरीर का दुराचारण करके, तब तो अपनी भी हानि करते हैं, क्योंकि विकार जगा करके, विकार जगा कर ही कोई बुरा काम करेंगे तो बुरा विकार जगाया तो अपनी हानि होने लगी, औरों की भी हानि होने लगी। इसलिए शील का पालन करना जरूरी। और दूसरी बात, यहाँ क्यों आए? यहाँ इसलिए आए कि अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर गहराइयों तक अंतर मन की गहराइयों तक पहुँच जाएं और वहाँ से विकार निकालना शुरू करें। ऊपर के विकार निकालने बहुत आसान है, बहुत तरह की साधना होती है। मन को डाइवर्ट कर लो, मन को ऐसी बात में लगा दो जो अच्छी लगती है, बस उसे दोहराते रहो, मन एकाग्र हो जाएगा, और एकाग्र हो जाएगा तो निर्मल भी हो जाएगा। पर ये ऊपर का परित चित्त, केवल कॉन्शियस माइंड वो होगा, बाकी वैसा का वैसा वहाँ तक पहुँची नहीं होगी। तो हमको तो उस गहराई तक जाना है। तो ऐसा चित्त को ऐसा एकाग्र करना है और इतना तीक्ष्ण बनाना है कि एकदम गहराई तक चला जाए। सदाचार नहीं होगा तो मन इतना सूक्ष्म हो ही नहीं सकता, हम उन गहराइयों तक जा ही नहीं सकते। एक उदाहरण से समझें कि देश को क्रूड ऑयल की बहुत मांग है, बहुत ज़रूरत है, तो देखते हैं कि ऑफशोर समुद्र के तट के आगे, समुद्र के नीचे भी तेल मिल सकता है, तो उसकी खोज करते हैं, करना ही चाहिए। जब खोज शुरू होती है तो खूब गहराई में जाना पड़ता है, तब खोजते हैं कि यहाँ कोई तेल का भंडार है कि नहीं, यहाँ कोई तेल का भंडार है कि नहीं। लेकिन जब खोज कर रहे हैं, इतने में मानसून आ गई तो समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें, तो खोज का काम बंद। मानसून चला जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे। हमें इस क्रूड ऑयल की बहुत भूख है, बहुत ज़रूरत है, फिर भी उस दिन काम बंद हो गया। इसी तरह से जब जब हम कोई विकार जगाते हैं, जब जब वाणी से, शरीर से कोई दुष्कर्म करते हैं, तो हमारे मन पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें, इतनी ऊंची ऊंची लहरें, विकारों की लहरें, क्रोध की, द्वेष की, कामवासना की, भय की, अहंकार की ऊंची ऊंची लहरें, तो हम अंदर तक कैसे जाएंगे, गहराइयों तक कैसे जाएंगे? तो पहले इन ऊंची ऊंची लहरों से तो बचें। लहरें तो रहेंगी, फिर भी समुद्र पर लहरें तो रहेंगी ही, ऊंची ऊंची लहरें मानसून में आती हैं, उसको रोकना। मन एकाग्र नहीं होगा तो हम गहराइयों तक नहीं जा सकते, और मन एकाग्र करना है तो हमको इन ऊंची ऊंची लहरों से बचना है। किसको करें पहले, किसको करें? पहले समाधि करें कि पहले शील करें, कि पहले शील करें कि पहले समाधि करें? घोड़ा आगे रखें, गाड़ी आगे रखें, कठिनाई खड़ी हो गई। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ये 7 दिनों का जेल, धर्म का प्रिजन, यहाँ आ गए। अब यहाँ आकर के तो शील पालन करना आसान हो गया, परिस्थिति के कारण आसान हो गया। सुबह 5:30 से रात को 9:30 बजे तक इतने बिजी, इसी काम में बिजी, तो कहाँ चोरी करने जाएंगे, कहाँ झूठ बोलेंगे, कहाँ, कोई सा भी शील नहीं तोड़ेंगे, इसी में लगे हैं, इसी में लगे हैं। तो परिस्थितियों के कारण ही सही हमारा शील का पालन कर रहे हैं। अब समाधि होगी, वो सही समाधि होगी, सम्यक समाधि होगी, वो बीनती हुई गहराइयों में चली जाएगी। ऐसा नहीं हो तो हमें जो संवेदना मिलने लगी, नहीं मिलेगी। ये संवेदना मिलने लगी, इसका मतलब हमारी समाधि बहुत सही दिशा में जा रही है। जाते 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 ये सम्यक समाधि हुई तो प्रज्ञा जागी, अपना ज्ञान जागा, प्रत्यक्ष ज्ञान जागा। अरे क्या हो रहा है बाहर बाहर दुनिया में, क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए साधना करने की जरूरत नहीं। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ें, उससे जानकारी हो जाएगी। अपनी अनुभूति से अपने भीतर क्या हो रहा है ये जानना है तो इतना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो शील हो तो समाधि हो तो प्रज्ञा जगेगी। शील होगा तो समाधि होगी, सम्यक समाधि होगी, सम्यक समाधि होगी तो प्रज्ञा होगी, प्रज्ञा होगी तो विमुक्ति होगी, विकारों से विमुक्ति होगी। इसलिए दूसरा कदम, शील के बाद दूसरा कदम समाधि का, चित्त एकाग्र करें। और कैसे करें? किसी कल्पना के आधार पर नहीं, किसी झूठी मान्यता के आधार पर नहीं, किसी फिलॉसफी के आधार पर नहीं, सत्य है। क्योंकि हमको अपने भीतर की सच्चाई जाननी है, अपने बारे में, अपने शरीर और चित्त के बारे में, इन दोनों के इंटरेक्शन के बारे में हमको गहराई से जानना है। तो इसके सिवाय और कोई बात इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। तो सांस से काम शुरू किया, फिर समझ लें इस सांस के साथ अगर कोई शब्द जोड़ देते, कोई नाम जोड़ देते तो काम हल्का हो जाता, चित्त बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाता। पर चित्त तो एकाग्र हो जाता, प्रज्ञा नहीं जाग पाती। तो ऊपर ऊपर का चित्त निर्मल भी हो जाता, हम तो गहराई में गए नहीं। हमारे अंतर्मन की गहराई में हमने क्या कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, कितनी भीतर ज्वालामुखी एक तैयार कर रखी है, वो नहीं निकलेगी तो हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, वैसे के वैसे रह गए हम। इसलिए सच्चाई का सहारा लिया, सांस का सहारा, कोई शब्द नहीं। शब्द बार बार दोहराते दोहराते मन जरूर टिक जाएगा, पर ये बातें नहीं होगी जो तुमने की यहाँ पर, या कोई रूप या आकृति या मूर्ति, कोई तस्वीर का सहारा नहीं लिया। वो लेते तो मन एकाग्र हो जाता, लेकिन इस विद्या से दूर चले जाते। इसलिए केवल सांस और कुछ नहीं, केवल सांस। ऐसा करते 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 प्रज्ञा जागने लगी, अपने शरीर में क्या हो रहा है, अपने मन में क्या हो रहा है, देख, विकार जागा, विकार जागा, मैं व्याकुल हुआ, विकार जागा, शरीर में संवेदना हुई, संवेदना हुई बुरी लगी तो द्वेष जगाया, फिर विकार जागा, अच्छी लगी तो फिर प्रतिक्रिया की, राग जगाया, फिर मैल जगाया, राग जगाया, द्वेष जगाया, राग जगाया, द्वेष जगाया। ये 2400 घंटे चलता है। ऊपर ऊपर के मन को 1000 सुधार लो, जो भीतर वाला मन है ये ऊपर वाले मन की एक बात नहीं सुनता। ऊपर वाला मन बुद्धि से काम करता है, हम कोई बात बुद्धि से समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, राग नहीं जगाना चाहिए, द्वेष नहीं जगाना चाहिए, बुद्धि से समझ गए, भीतर वाला मन, बुद्धि की पहुंच नहीं वहाँ तक, वो क्या सुनेगा, सुनेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, वो अपने स्वभाव के मुताबिक काम करता रहेगा। अच्छा लगा राग जगाएगा, बुरा लगा द्वेष जगाएगा, शरीर पक्षी संवेदनाएं, राग जगाएगा, बुरी आई, द्वेष जगाएगा, और 2400 घंटे शरीर पर संवेदना होती रहती है। सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, 2400 घंटे। एक उदाहरण से समझे, रात को सोए हैं, बहुत गहरी नींद में सोए हैं। कौन सोया है? ये ऊपर वाला चित्त सोया है, कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, वो सो गया। भीतर वाला चित्त नहीं सोता, उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। वो अनकॉन्शियस नहीं है, हमेशा कॉन्शियस है, 2400 घंटे जाग रहा है। किस बात के लिए जाग रहा है? शरीर में क्या संवेदना हो रही है वो भीतर वाला चित्त जान रहा है। गहरी नींद में सोए हैं, यकायक कोई मच्छर आया, उसने काट लिया, मच्छर के काटते ही पीड़ा हुई, भीतर वाले को मालूम हो गया। ऊपर वाला चित्त सोया है गहरी नींद में, और भीतर वाले ने प्रतिक्रिया की, हमने हाथ उठाया और मार दिया उस मच्छर को। अच्छा, नहीं मारा तो उड़ा दिया, मार दिया, फिर भी यहाँ पर अपनी संवेदना हो रही, काट गया ना वो, तो नींद में है, गहरी नींद में खुजलाता है, नींद गहरी है। कौन खुजलाता है? अनकॉन्शियस माइंड खुजलाता है, कॉन्शियस को कुछ पता नहीं। सुबह पूछे, रात को कितने मच्छर काटे तुम्हें? रात को मच्छर काटे? पता ही नहीं बेचारे को रात को मच्छर काटे, क्या बताएगा कितने मच्छर काटे। बहुत बड़ा बैरियर है, कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत मोटी दीवार है। रात को सोए हैं, गहरी नींद में सोए हैं, सुबह होते होते मौसम में जरा ठंड आने लगी, गहरी नींद में सोए हैं, जरा ठंड आने लगी, पाँव के पास चादर पड़ी है, उसे उठा लिया और ओढ़ लिया। पता ही नहीं कब तो ठंड लगी, कब चादर उठाई और कब ओढ़ लिया। सुबह उठो, अरे चादर ओढ़ी हमने, कब ओढ़ी? पता ही नहीं ना। ये काम अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है, कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस को पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये दोनों के बीच जो बैरियर है वो टूटता है, तो अनकॉन्शियस माइंड जो कि बहुत बड़ा माइंड है, अनकॉन्शियस नहीं है, जो बड़ा माइंड है, वो हमेशा प्रतिक्रिया करता है, राग द्वेष, अच्छा लगा राग, बुरा लगा द्वेष। उसका ये स्वभाव न जाने कितने जन्मों का है, कितने जन्म को न माने तो इस जन्म में भी कब का ये स्वभाव है, इतना गहरा हो गया। ये स्वभाव तोड़ना है, तो साधना इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है वो इसको चीरते चीरते ऑपरेशन करते करते एकदम पैंदे तक पहुँच जाए, अनकॉन्शियस माइंड के डीपेस्ट लेवल तक पहुँच जाए, और जो डीपेस्ट माइंड है वो कॉन्स्टेंटली बॉडी रिलेशन, बॉडी सेंसेशन के साथ रिलेटेड है, बॉडी में क्या। तो हमने बॉडी सेंसेशन के साथ अपने मन को वहाँ तक पहुँचाया, तो एक तो सेंसेशन मालूम होने लगे, और दूसरी बात ये हुई, हम समझने लगे ये तो अनित्य है। कोई भी सेंसेशन आई हमेशा रहने वाली नहीं है, देखते हैं कितनी देर रहती है। कितने ही दुखद आई, देर सुबह समाप्त हो जाती है, कितने ही सुखद आई, समाप्त हो जाती है। ये होश जागता है, होश जागता है तो हम समता में रहते हैं, समता में रहते हैं माने राग नहीं जगाते, द्वेष नहीं जगाते, तो राग जगाने का जो स्वभाव है वो कमज़ोर होते जाता है, द्वेष जगाने का स्वभाव है कमज़ोर होते जाता है। वो कमज़ोर होते होते हमारे मन का बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया। जो बिहेवियर पैटर्न जब देखो तब विकार जगाता है, अपने आप को दुखी बनाता है, औरों को दुखी बनाता है, वो चेंज होने लगा। ये है शील, है समाधि, है प्रज्ञा, है शील, है समाधि, है प्रज्ञा है। इसके साथ कहीं कुछ जोड़ना नहीं, धर्म अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए कहा गया केवल परिपूर्णंग, परिपूर्ण है, कुछ नहीं जोड़ो, केवल परिशुद्धंग, एकदम परिशुद्ध है, इसमें से कुछ निकालो मत। क्या निकालोगे? शील है, समाधि है, प्रज्ञा, क्या निकालोगे? शील निकालोगे तो कमज़ोर हो गया, समाधि निकाली तो कमज़ोर हो गया, प्रज्ञा निकाली तो कमज़ोर हो गया, तीनों जुड़े हुए हैं और परिपूर्ण है, कुछ और जोड़ने की ज़रूरत नहीं। अपने देश से यह विद्या क्यों लुप्त हुई, इसका सारा इतिहास हमारे आंखों के सामने है, क्योंकि आज वही बात रिपीट हो रही है। आज भी अलग अलग संप्रदाय वाले, उनको अपने संप्रदाय से इतना चिपकाव है, अपनी बाड़े बंदी से इतना चिपकाव है, कि जो हमारे बाड़े में जो गाय भैंसे हैं, गाय बकरियां हैं, वो हमारे बाड़े में रहे, कहीं दूसरे बाड़े में न चली जाए, दूसरे बाड़े के भले हमारे बाड़े में आ जाए, यूँ बांध के रखना चाहते हैं। वो देखते हैं, अरे हमारा आदमी ये विद्या सीख लेगा तो हमारे बाड़े के बाहर चला जाएगा, विद्या तो अच्छी है लेकिन हमारे बाड़े के बाहर चला जाएगा। तो तब भी ऐसा हुआ, अब भी ऐसा शुरू हुआ, हम मुस्कराते हैं। हमारे लिए तो सबके लिए दरवाज़ा खुला, कोई आए सीखे। तो कुछ लोग ऐसे हुए यहाँ से सीख के गए, तो इसके साथ कुछ और बात जोड़ दी, अपने बाड़े की बात जोड़ दी, ताकि अपने आदमी अपने बाड़े में बंद रहें, शील समाधि प्रज्ञा अच्छी है, लेकिन इसके साथ अपनी बात भी होनी चाहिए ना। तो अपनी बात क्या है? तो किसी ने कुछ जोड़ा, किसी ने कुछ जोड़ा। एक परंपरा, एक संप्रदाय ऐसा है, वो कहता है कि ये सारा करो, लेकिन फिर आत्मा से आत्मा को देखो। तो एक देखने वाली आत्मा, एक दिखाई देने वाली आत्मा। कल्पना करो, एक आत्मा देख रही है, दूसरी आत्मा को देख रही है। अरे बाबा, क्या लेना देना। तुम्हारे मन में विकार आत्मा से जगते हैं, इस आत्मा की वजह से विकार जगते हैं, क्या लेना देना। लेकिन उनको अपने बाड़े में बांध के रखना है ना। एक उदाहरण दिया, किसी की निंदा की बात नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोग आए जिन्होंने देखा कि बात तो बड़ी अच्छी है, इसमें एक बात अपनी जोड़ देना, इसमें अपनी जोड़ देना। तो समय बीतते बीतते क्या होता है, जो बात अपने जोड़ दी वो तो प्रमुख हो गई, और ये धर्म की सही बात है ये कमज़ोर पड़ती चली गई। इसके खाली चर्चा करेंगे, शील बड़ा अच्छा है, सदाचार बहुत अच्छा है, समाधि होनी बहुत अच्छी है, प्रज्ञा जगानी बहुत अच्छी है। करेगा नहीं, करेगा जो अपनी बात जोड़ी है उसको करेगा। कोई कर्मकांड जोड़ दिया तो कर्मकांड करेगा, कोई तीज त्यौहार जोड़ दिया उसको करेगा, कोई व्रत उपवास जोड़ दिया उसको करेगा, कोई फिलोसफी जोड़ दी उसको करेगा, शील समाधि प्रज्ञा काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ जोड़ दिया। इस तरह से इस देश में नष्ट हुई, और दोबारा भी ऐसे ही नष्ट हो सकती है। इसलिए जो जो समझदार लोग हैं वो खूब समझते हैं कि इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, परिशुद्ध है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं, परिपूर्ण है, परिशुद्ध है। तो इसलिए खूब अच्छी तरह समझ करके इस रास्ते चलना है कि जो सीखा है पहले तो समझें सचमुच ठीक है कि नहीं है, इसको हम जीवन में उतार के देखें सचमुच ठीक है कि नहीं है, और सचमुच ठीक है तो इसको शुद्ध रखेंगे, परिपूर्ण रखेंगे। क्या किया, ये करते करते दो गुण हमारे जागने लगे। धर्म में आगे बढ़ता आदमी तो उसमें दो गुण सद्गुण जागते हैं, बड़े रेयर हैं, हर एक में नहीं जागते, जो धर्म के रास्ते चलता है उसमें जागते हैं। एक तो ये कि मन होता है कि कैसे किसी की सेवा करूं, कैसे किसी का उपकार करूं, कैसे किसी का भला करूं। यूं मन में मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है, लेकिन उसके साथ साथ बदले में कुछ पाने की बात नहीं। जहाँ सद्भावना तो जागी, मैं इतनी सेवा करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, लेकिन हमको बदले में कुछ मिलना चाहिए ना, तो दूषित हो गई सेवा, धर्म दूषित हो गया। जहाँ बदले में कुछ पाने की भावना है, अपने स्वार्थ की बात हो गई, हम परमार्थ नहीं कर रहे, हम सेवा नहीं कर रहे, सेवा के साथ अपनी बात जुड़ गई। हमको कुछ मिले, मानो अच्छा रुपया पैसा नहीं मांगता, लेकिन कम से कम ये तो हो कि लोग अप्रिशिएट करें, मैं देखो इतनी सेवा करता हूँ, ओ तो हमारा मान करे, हमारा सम्मान करे, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी प्रशंसा। और यही नहीं करते, हम बैठे हैं कोई सिर नहीं झुकाता, तो हमारे सिखाने का क्या फ़ायदा हुआ। ओ ये भाव है, तू मान प्रतिष्ठा के लिए सिखा रहा है, रुपये पैसे के लिए नहीं सिखाता, तो मान प्रतिष्ठा के लिए सिखा रहा है, तो धर्म नहीं है। अभी आगे नहीं बढ़े हम, बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल देवा, वन वे ट्रैफिक, केवल देना है, केवल देना है। जहाँ जहाँ कुछ बदले में पाने की बात होती है वहाँ दूषण आ जाता है। किसी से प्यार है, प्यार है, लेकिन बदले में कुछ चाहते हैं उससे, तो प्यार दूषित हो गया। हम कुछ नहीं चाहते, केवल प्यार है। देना है तो केवल देना है, बदले में कुछ नहीं चाहते। सेवा है तो केवल सेवा है, बदले में कुछ नहीं चाहते, तो धर्म शुद्ध होता है। तो एक गुण तो ये कि हम सेवा करेंगे, दूसरे का कल्याण करेंगे जितना हो सके, लेकिन बदले में कुछ पाने की जरा सी भी इच्छा नहीं होगी। और दूसरा ये, हम तो किसी का कल्याण करेंगे, सेवा करेंगे, और उसे भूल जाएंगे, क्योंकि बदले में कुछ पाना नहीं है। अब उसको याद करेंगे, उसकी सेवा की थी, उसकी सेवा की थी, अरे उसकी सेवा की थी, उसने बदले हमारा कुछ नहीं किया, ये भाव आएगा, सेवा की और भूल गए। लेकिन कोई दूसरा हमारी सेवा करता है, कोई दूसरा हमें थोड़ी भी मदद करता है, अरे एक वक्त का भोजन भी कोई देता है, तो दूसरा गुण, धर्म धार्मिक व्यक्ति के मन में दूसरा गुण जागता है, कृतज्ञता का। ओ मन बड़ा कृतज्ञ होता है, इससे मुझे ये प्राप्त हुआ, इससे मुझे ये प्राप्त हुआ, उसको याद रखता है। दूसरे से कुछ मिला उसको याद रखता है, स्वयं किसी को देता है तो उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे से कुछ भी मिला तो उसको याद करता है, खाना मिले, भोजन मिले, वस्त्र मिले, दवा मिले, धर्म मिले, जो कुछ मिले उसको याद करेगा, मन में कृतज्ञता के भाव आएंगे, कृतज्ञता के भाव आएंगे, ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड धर्म का बहुत बड़ा अंग है। ये दोनों में पकना जरूरी है। तो याद करेगा, मुझे एक कल्याणकारी विद्या कैसे मिली? अपने देश में एक महापुरुष हुआ सिद्धार्थ गौतम, और उसने अनेक जन्मों में सद्गुण इकट्ठे करते करते उनको पारमिता कहते हैं। जो हमको पार लगा दे, भवसागर के पार पहुंचा दे, उसको पारमी कहते हैं। तो अनेक जन्मों में पारमिता अपने सद्गुण इकट्ठे करते करते परिपूर्ण हो गया, तब इस जीवन में बुद्ध बना। तो कितनी मेहनत की इसने, कितना कष्ट उठाया। केवल खुद को ही मुक्त करना था, इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। बुद्ध बनना है तो केवल अपनी मुक्ति नहीं, अनेकों की मुक्ति का में सहायक हो जाएगा। तो हमारे लिए इतनी मेहनत की इसने, ये विद्या ढूंढ निकाली और फिर बांटी लोगों को। नहीं बांटता तो हमें कैसे मिलती? केवल अपना उद्धार करके रह जाता, अपना मुक्ति लेके रह जाता तो हमको कैसे मिलती? तो मन में कृतज्ञता का भाव जागता है उस महापुरुष के प्रति, उस सुपर साइंटिस्ट के प्रति, कि कैसी विद्या ढूंढ निकाली जिससे हमारा भी कल्याण हो रहा है और न जाने कितनों अकल्याण हो रहा है। उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा से जिन लोगों ने संभाल के रखी, भारत में लगभग 500 बरस तक लोगों ने संभाल के रखी तो ना कायम रही, नहीं तो हमें नहीं मिलती। तो उनके प्रति कृतज्ञता। और बुद्ध के कोई 200 बरस के बाद एक अशोक नाम का सम्राट हुआ अपने देश में, बहुत चंड स्वभाव का, बहुत गलत रास्ते जाने वाला। ये विद्या मिल गई तो बदल गया, संत हो गया, चंड अशोक धम्म अशोक हो गया। अब वो सारी प्रजा में इसका प्रचार करता है, अरे ये विद्या कैसी अच्छी है, करो तुम्हारा कल्याण होगा, औरों का कल्याण होगा। सारे देश में फैली। उसने बाहर भी भेजा, अपने गुरु की आज्ञा लेकर के बाहर भेजा, भिन्न भिन्न देशों में भेजा। 500 वर्ष बीतते भारत में नष्ट होने लगे। 700-800 में तो एकदम समाप्त हो गए। बाहर देशों में गई, वहाँ भी धीरे धीरे लुप्त हो गई। एक देश ने संभाल के रखा, हमारे पड़ोसी देश बर्मा ने, शुद्ध रूप में बहुत थोड़े से लोगों ने, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु बाकी लोग जानते तक नहीं, लेकिन थोड़े से लोगों ने क्यों संभाल के रखी? कि यहाँ से एक भविष्यवाणी हुई थी जब भेजा गया, वहाँ पर ये विद्या भेजी गई कि देखो ये रत्न है, अनमोल रत्न है। और उन दिनों बर्मा को कहते थे स्वर्ण भूमि, ये स्वर्ण भूमि है, स्वर्ण भूमि में ये रत्न जा रहा है, वो संभाल के रखेगी, केवल स्वर्ण भूमि संभाल के रखेगी, बाकी सारी दुनिया से ये विद्या नष्ट हो जाएगी। ऐसी एक भविष्यवाणी हुई, भारत से भी हो जाएगी, सब जगह से हो जाएगी। 2500 वर्ष, भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष पूरे होंगे तब ये विद्या बर्मा से भारत लौट करके आएगी। और भारत में ऐसे लोग जन्मे होंगे जो बहुत पुण्यशाली हैं, अनेक जन्मों से बहुत अच्छा काम किया है, वो जब सुनेंगे तो एकदम खींचे हुए आएंगे, उनको अपना जैसा लगेगा। तो भारत के अनेक लोग इसको स्वीकार करेंगे, और जब भारत के लोग स्वीकार करने लगेंगे तो बाहर फैलनी शुरू होगी, तो सारे विश्व में फैलेगी, ऐसी एक भविष्यवाणी। तो अनेक लोग पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रखे, इसलिए कि हम नष्ट कर देंगे, बाकी लोगों तो नष्ट कर ही दी। हर गुरु हर आचार्य मेरे मरने के पहले 2-4 आदमियों को तैयार करके मरो, मेरे मरने के पहले 2-4 इस मारे की शुद्ध रूप में कायम रहेगी, तब न भारत जाएगी, नहीं भारत कैसे वापस जाएगी। तो इसलिए उन्होंने संभाल के रखा। उनके प्रति मन में कृतज्ञता का भाव, वो न संभाल के रखते तो जैसे सारे दुनिया में समाप्त हो गई, भारत में भी समाप्त हो गई, बर्मा में भी समाप्त हो जाती, तो हमें कैसे मिलती? नाम ही नहीं जानते, ये विद्या मिलती कैसे? तो उनका उपकार मानते हैं, अशोक का उपकार मानते हैं कि उसने बाहर भेजी, बर्मा के जो साधक आचार्य हैं उनका उपकार मानते हैं कि उन्होंने संभाल के रखी और फिर भारत आए। मैं अपनी बात देखता हूँ कि बहुत कट्टर सनातनी हिंदू घर में जन्मा, अच्छा हुआ, क्योंकि उस परंपरा की जो अच्छाइयाँ हैं वो मुझे प्राप्त हुई। बहुत गहरा भक्ति मार्ग, ऐसा भक्ति मार्ग जो हृदय को द्रवीभूत कर दे और आंखों से आंसू आए, इतनी भक्ति, इतने भक्ति, माता पिता ऐसे थे, सारा परिवार ऐसा था। तो उस परंपरा में जन्मा, पला, बड़ा हुआ। और एक बात हुई कि बचपन से ये सिखाया गया, बुद्ध हमारे अवतार हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी मूर्ति को नमस्कार करना चाहिए। हमारे विष्णु के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं, उनकी शिक्षा में नहीं जाना, उनकी शिक्षा बहुत ख़राब है, उनकी शिक्षा में जाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशनिंग माइंड की, ये लेप लगा हुआ था। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, उनकी कोई वाणी, उनकी कोई शिक्षा सुनने को तैयार नहीं। 31 वर्ष की उम्र तक हमने कभी बुद्ध की वाणी का एक शब्द नहीं सुना। ऐसा संयोग हुआ, फिर कोई पुराना पुण्य होगा हमारा, ऐसा संयोग हुआ कि एक बीमारी लग गई, माइग्रेन नाम की बीमारी, वो स्पेशल टाइप के माइग्रेन जिसका कोई इलाज नहीं, कोई पेन किलर काम नहीं आता। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, बहुत इलाज किया, आखिर मोर्फिया इंजेक्शन देने लगे, अफीम की सुई देने लगे। 2-4 वर्ष चली, फिर उन्होंने कहा अफीम की सुई देते हैं तो तुम अफीमची हो जाओगे, तुमको एडिक्शन हो जाएगा मोर्फिया का। जी घबराया, अगर एडिक्शन हो गया तो रोज़ लेनी पड़ेगी, रोज़ मोर्फिया लेंगे तो मोर्फिया के बाद एक दिन एकदम ख़राब जाता है, उल्टियाँ होती हैं, जी घबराता है, पड़े रहो बिस्तर पर। अरे तो कैसे काम करेंगे हम, मोर्फिया एडिक्ट हो जाएंगे, कैसे काम करेंगे? तो उन्होंने कहा देखो हमारे पास कोई इलाज नहीं, तुम बार बार अपने काम धंधे के लिए दुनिया में घूमते हो तो एक बार व्यापार को भूलो, केवल अपने इलाज के लिए जाओ। तुमको जो स्पेशल टाइप का माइग्रेन है इसका कोई इलाज नहीं है, कहीं इलाज नहीं है, लेकिन वेस्ट में कोई ना कोई पेन किलर ऐसा होगा जो तुमको मोर्फिया से छुड़ा देगा। उनकी बात समझ में आई तो केवल इलाज के लिए गया। तो बहुत दिनों स्विट्ज़रलैंड रहा, उनके बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, जर्मनी रहा, इंग्लैंड रहा, अमेरिका रहा, जापान में हमारी ऑफिस से ज़्यादा समय तक रहा, सारी जगह के बड़े 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 डॉक्टर्स, सब बेकार। अरे माइग्रेन तो दूर, मोर्फिया नहीं छुड़ा सके। घर लौटा तो रोग बढ़ता ही गया, जो जो दवा की, और ज़्यादा व्याकुल हो गया। तो हमारा एक मित्र जो उस समय बर्मा का अकाउंटेंट अटॉर्नी जनरल था, बर्मा आज़ाद हुआ तो उनका पहला अटॉर्नी जनरल, आगे जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, बहुत मित्र था हमारा, उसने दबाव दिया, देख भाई तेरा रोग है साइकोसोमेटिक है, मन तेरा हमेशा टेंशन से भरा रहता है, सचमुच टेंशन, बड़ा अहंकारी। अरे 25 वर्ष की उम्र में इतनी सफलता प्राप्त की, माने व्यापार में, धंधे में ही नहीं, समाज में, हर काम में प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, सफलता सफलता, बड़ा अहंकार। तो इतना अहंकार आदमी है, बड़ा क्रोधी। तो ये सारे खोट हमारे भीतर, इस मारे ये माइग्रेन है। अगर तू ये विद्या सीख लेगा 10 दिन तो तेरा खोट निकल जाएगा, माइग्रेन अपने आप निकल जाएगी। बात तो उसकी ठीक लगी कि ये रोग तो सचमुच साइकोसोमेटिक है, मन से संबंधित है, लेकिन मैं कैसे करूँ ये प्रश्न? अरे ये तो बौद्धों की है, ये तो बौद्ध धर्म है, और बचपन से सिखाया गया बौद्ध धर्म बहुत खराब होता है, बौद्ध धर्म में कभी नहीं जाना, स्वय धर्म ही निधनंग श्रेय पर धर्मो भयावह भयावह, अपने धर्म में मर भले जाना, दूसरे धर्म में नहीं जाना, बहुत भयावह है, बहुत भयावह, इसका लेप लगा हुआ बहुत, भाई मर भले जाए, मैं बौद्ध धर्म में नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। तो हमारे मित्र ने कहा अच्छा मत जाना, पर अपने गुरु से मिल तो सही, बात तो समझ क्या सिखाते हैं। गया गुरु के पास, वो भी ऑफिसर, गृहस्थ हैं, कोई सन्यासी कोई भिक्षु नहीं, बर्मा के पहले अकाउंटेंट जनरल, इंडिपेंडेंट बर्मा के पहले अकाउंटेंट जनरल, उनके घर में गया, संत पुरुष, सारा वातावरण इतनी शांति का। गया उनसे मिला कि देखिए मुझको ये रोग है और हमारे मित्र ने हमें भेजा है, वो उनका ही मित्र था, तो उसको फ़ोन भी आ गया था, देखो गो इनका मत आना, हम तुमको नहीं लेंगे, तुम रोग निकालने के लिए आए हो हमारे पास, अपना माइग्रेन निकालने के लिए आए हो। अरे तुम्हारे देश की इतनी ऊंची अध्यात्म की विद्या है जो जन्म मरण के सारे दुखों से तुमको मुक्त कर देगी, और तुम्हें सिर दर्द के मुक्ति के लिए आए हो, मत आना, तुम इसको अध्यात्म को डिवेल्यूएशन करते हो, इसका अपमान करते हो, हम नहीं सिखाएंगे तुमको। ये सुनकर के मन में जरा अच्छा भी लगा कि कैसा संत आदमी है, नहीं तो कोई गुरु हो तो हमारे जितने चेले आ जाए, आओ 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 तुम्हारा माइग्रेन तो एकदम निकाल देंगे हम, चले आओ हमारे पास। और देखिए ये आदमी इतना प्रसिद्ध आदमी है, इसका अपने इंडियंस लोगों में ही नहीं प्रभाव है, बर्मों में भी प्रभाव है, और सरकार में इतना प्रभाव है, ऐसा है ऐसा है, तो मैं बड़ा आदमी होकर के देखो गोइन का मेरा चेला हो गया, ऐसे तालियां बजाऊंगा, और ये कहता मत आओ। अरे ये तो सचमुच कोई स्वार्थ नहीं है इसे। तो फिर हमने दूसरी बात कही कि देखिए अच्छा इसको छोड़ें हम, लेकिन हमको अपना विकार निकालना है, और हमें बताया गया कि इस साधना से विकार निकलता है, लेकिन क्या करूँ, बौद्ध धर्म है ना, हमको बचपन से सिखाया गया बहुत धर्म बहुत खराब होता है, तो हंसे जोर से, अच्छा क्या खराब है हमको, हम तुमको समझाएं, हम क्या सिखाएंगे तुमको वहाँ पर, सदाचार का जीवन जीना। तुम यहाँ के हिंदुओं के लीडर हो, हमें बताओ तुम्हारे हिंदू धर्म में सदाचार का विरोध है? सदाचार का विरोध कैसे होगा, किसी धर्म में नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में सदाचार का क्यों विरोध होगा? बिल्कुल नहीं है, हम सदाचार करना सिखाएंगे। कैसे सदाचार करना सिखाएंगे? मन को वश में, मन वश में ही नहीं है तो कैसे होगा? हम तुमको मन वश में करना सिखाएंगे, उसको हम समाधि कहते हैं। समाधि में कोई इतराज है तुम्हारे हिंदुओं को? समाधि में क्या इतराज है, तब तक हमने बहुत किताबें पढ़ी थी अपनी, अपने शास्त्रों की, ये मुनि जंगल में गया समाधि लगाए, वो ऋषि जंगल में गया समाधि, हम गृहस्थ बाबा हम कहाँ समाधि जाने, कोई हमको समाधि सिखाए बड़ी अच्छी बात, कोई विरोध नहीं समाधि में, कोई विरोध नहीं, समाधि से कुछ नहीं होता, चित्त एकाग्र होगा, ऊपर ऊपर से निर्मल हो जाएगा, भीतर वैसे ही रहेगा। इसके लिए हम अगला कदम सिखाएंगे, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। और हम गीता का इतना पाठ करते थे, स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ से का भाषा कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ भीतर राग भय क्रोध हो उसका राग दूर हो जाता है, क्रोध दूर होता है, भय दूर होता है। अरे हमको प्रज्ञा सिखाएंगे, इसमें क्या विरोध है? ना ना कोई विरोध नहीं, बस शील समाधि प्रज्ञा तीन को छोड़ करके चौथी बात नहीं हमारे पास। भगवान बुद्ध के पास चौथी बात नहीं थी, ये तो जोड़ दी गई दुनिया भर की बातें उन पर थोप दी गई। भगवान बुद्ध की शिक्षा में केवल तीन है, तुमको एतराज नहीं हो तो आके अजमा के देख लो। बात समझ में आई, इसमें क्या खराबी है, शील है समाधि है प्रज्ञा, क्या खराबी है? तो हिम्मत करके 10 दिन चला गया, मन में झिझक रही कि कहीं बौद्ध न बन जाऊँ मैं, कहीं बौद्ध न बन जाऊँ, तो मन को दृढ़ करके गया, विद्या इनके सीखूंगा लेकिन रहूंगा कट्टर हिंदू, कभी बौद्ध नहीं बनूंगा। गया और वहाँ जाकर जो काम किया तो देखा, अरे ये जो सिखाते हैं वो तो बचपन से हम सुनते आए अपनी परंपरा में, पर करना तो किसी ने नहीं सिखाया, ये करना सिखाते हैं ना। और जगह तो हमारे यहाँ तो थ्योरी थ्योरी थ्योरी, उपदेश ही उपदेश, उपदेश ही उपदेश, ये करना सिखाते हैं और करना ही नहीं सिखाते। उसका रिजल्ट आता है, कहीं माइग्रेन गई, कहीं मोर्फिया गई, उसको छोड़ो। और जो विकार थे, इतना क्रोधी आदमी, क्रोध कम होने लगा, इतनी वासना वासना कम होने लगी, भय कम होने लगा, अहंकार कम होने लगा, जीवन बदलने लगा। अरे बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है ना। फिर देखा, अरे भाई कहीं मेरे पर ही कोई ऐसा जादू हुआ हो, ये विद्या सबके काम आती है क्या? तो अपने भारतीय मित्र थे उनको एक एक करके अपने परिवार के लोगों को भेजा, जो जाकर आया उसी को लाभ हुआ, जो जाकर आया उसी को लाभ हुआ। अरे सबके लाभ की बात है, मन प्रसन्नता से भर उठा। उस व्यक्ति ने जो इतनी बड़ी विद्या दी, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। 14 वर्ष तक वहाँ रहते हुए, अपने परिवार का काम करते हुए, समाज का काम करते हुए, व्यापार का काम करते हुए, इस विद्या में पकता रहा। 14 वर्ष होते होते हमारे गुरुदेव ने कहा कि अब समय आ गया, बुद्ध को 2500 वर्ष हो गए, बुद्ध को परिनिर्वाण किए 2500 वर्ष हो गए, और अब ये भारत में जाएगी, और हमारा कर्जा है, ऋण है भारत का हम पर, हमको ऋण चुकाना है। तो खुद जाना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं आ सके। उन दिनों सरकार बर्मा नागरिकों को पासपोर्ट नहीं देती थी बाहर जाने को, लेकिन ऐसा संयोग हुआ मुझे पासपोर्ट दे दिया। मेरी माता पहले आ गई थी, वो बीमार थी, खबर आई, हमने अप्लाई किया। बहुत लोग ऐसे अप्लाई करते थे, किसी को नहीं मिलता था, संयोग था, आ गया। यहाँ आया, गुरुदेव ने कहा कि देखो अब तुम्हें काम करना है, ये विद्या भारत से लुप्त हो गई, ये अनमोल रत्न है, भारत को वापस देना है, ये तुम्हारा काम है। यहाँ आया तो सोचता था कैसे किसी को दूंगा, अरे मैं कोई साधु नहीं, सन्यासी नहीं, पीले कपड़े नहीं, जटा नहीं, दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, सिर मुंडाया हुआ नहीं, कौन हमारे पास आएगा, और 10 दिन हमारे साथ कौन रहेगा? ऐसे मंत्र देना हो, आए दीजिए जाओ अब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद दीजिए जाओ, थोड़ी भस्म निकाल के दे दीजिए जाओ ठीक हो जाएगा, थोड़ा पानी दे दिया पी लो ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, कौन आएगा हमारे पास? अच्छा कोई आया भी तो कौन व्यवस्था करेगा? 10 दिन रहना है, रहने का स्थान चाहिए, उनका खाना पीना सबका प्रबंध होना चाहिए, कौन करेगा? नहीं बाबा, नहीं होने वाली बात है, ऐसे ही गुरुजी ने कह दिया तुम जाओ, अपने आप हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा? 10-15 दिन नहीं बीते कि पहला कोर्स लग गया, पहला कोर्स लग गया, काम करने वाले आ गए, सेवा करने वाले आ गए, स्थान का प्रबंध हो गया, किसी धर्मशाला में हुआ, कहीं भी हुआ, काम शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात हुई उस पहले शिविर में हमारी माता बैठी, हमारे पिता बैठे, उनकी सेवा की, मन इतना प्रसन्न हुआ। कोई अपने माँ बाप के उपकार, इतना बड़ा उपकार होता है माँ बाप का, उसके ऋण को कोई नहीं चुका सकता। श्रवण कुमार की तरह माँ बाप को कंधे पर उठाए फिरे तीर्थ यात्रा कराते हुए सारा जीवन, तो भी उनके उपकार का ऋण नहीं चुकता। अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना है तो अगर वो शीलवान नहीं है तो उनको शीलवान बनाने में सहायक हो जाए। शीलवान तो हैं पर समाधि नहीं है, तो समाधि में उनको प्रमुख होने में, समाधि में प्रबल होने में, सफल होने में सहायक हो जाए। समाधि भी है प्रज्ञा नहीं है तो उनकी प्रज्ञा जगाने में सहायक हो जाए। अरे मुक्त हो गया, उनके ऋण से मुक्त हो गया, तो मैं भी उनके ऋण से मुक्त हो गया, बड़ा कल्याण हुआ। माता पिता के प्रति बड़ी कृतज्ञता का भाव पहले से ही था, इनका बदला कैसे चुकाऊँ, ये बदला चुकाया उनको शुद्ध धर्म में। बार बार शुद्ध धर्म कहता हूँ तो समझना चाहिए, शुद्ध धर्म का मतलब बुद्ध धर्म अमुक धर्म ऐसा नहीं, शुद्ध धर्म माने शील समाधि प्रज्ञा को छोड़ करके इसके साथ और कोई कवर नहीं है, और कोई कर्मकांड नहीं है, और कोई दार्शनिक मान्यता नहीं है, और कोई खेल तमाशे नहीं है, केवल शुद्ध शील और समाधि और प्रज्ञा। इसमें प्रतिष्ठित किया, शिविर लगने लगे। कोई डेढ़ वर्ष के बाद बोधगया में शिविर लग रहा था और अचानक खबर आई कि हमारे गुरुदेव, उनका देहांत हो गया। तो मन में एक विचार उठा कि मैं अपने गुरु के ऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूँ जिससे इतना कुछ प्राप्त हुआ। अरे नया जीवन मिला, दूसरा जीवन मिला। अपने यहाँ दूसरे जीवन को बहुत महत्व देते हैं, उसको द्विज कहते हैं, दो बार जन्मा। पक्षी दो बार जन्मता है, एक बार अंडे के रूप में जन्मता है, फिर अंडा टूटता है तो उसमें से पक्षी निकलता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। तो दो बार जन्म हुआ, एक बार तो माँ के कोख से जन्मा लेकिन अंडा है, चारों ओर अविद्या का अंडा है, और अब दूसरा जन्म हुआ, वो अविद्या का खोल टूटी और तब नया गोविंद का निकला उसमें से, और जिसको ये सारे कुछ विद्या प्राप्त हुई, नई दुनिया, नया जीवन। और जिसने मुझे नया जीवन दिया उसके उपकार से कैसे भूलूं। इतने लोग आए हो, युवक युवतियां, धर्म के लिए आए हो, किसी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए नहीं। हिंदू है तो हिंदू ही अपने आप को जीवन भर कहे, जैन है तो अपने को जैन कहे, मुस्लिम है तो मुस्लिम कहे, यहूदी है तो यहूदी कहे, सिख है तो सिख कहे, नाम बदलने की जरूरत नहीं। क्या पड़ा है नाम में, ये नाम हो या वो नाम हो, अंदर धर्म के गुण आने चाहिए। जन्म का दुखियारा और नाम रख दिया उसका सदा सुख, जन्म का दुखियारा क्या सदा सुख, जन्म का अंधा नाम रख दिया नयन सुख, क्या नयन सुख। नाम में कुछ आने जाने नहीं, चाहे सो नाम हो, अंदर से धर्म आना चाहिए। हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत चलती है, विद्या धरा नाम, नाम विद्याधर है, विद्या धरा नाम न कक्को न खक्खो न कयावे न खावे, और गंगा धरा नाम न नहाबो न धोबो, लक्ष्मी धरा नाम न पीसो न टक्को, यशो धरा नाम कोई पूछे न जाने। अरे नामों में क्या पड़ा है, गुण आने चाहिए। अपने को जैन कहो, बौद्ध कहो, हिंदू को, ईसाई को, मुस्लिम को, चाहे सो कहो, धार्मिक बनो। हर जैन धार्मिक जैन बने, हर हिंदू धार्मिक हिंदू बने, हर बौद्ध धार्मिक बौद्ध बने, हर ईसाई धार्मिक ईसाई बने, धार्मिक मुसलमान बने, सारा संसार बदल जाएगा। ये जो फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, जो कुछ चल रहा है, आदमी बदलते बदलते अपने आप उसके बाहर निकलेगा, बड़ा लोक कल्याण होगा। तो ये मैसेज लेकर जा रहे हो कि मुझे अपना भी कल्याण करना है इस रास्ते चल करके, और लोक कल्याण में आगे बढ़ते बढ़ते लोक कल्याण में मैं कैसे सहायक हो सकता हूँ, पहले अपने को पकाना है, फिर खूब सहायक हो गए, अपना भी मंगल सधेगा, औरों का भी मंगल सधेगा। धर्म में तो सबका मंगल, सारे विश्व का मंगल, खूब मंगल हो। खूब कल्याण हो, स्वस्ति हो, मुक्ति हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। भला हो, भला हो, भला हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, जन जन सुखिया होए रे, जन जन सुखिया होए रे, जन मन के दुखड़े मिट जाए, जन मन के दुखड़े मिट जाए, जन मन मंगल छाए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल।